कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in। जयश्री राय की कहानी छुट्टी का दिन। आज रविवार है यानी छुट्टी का दिन। मैं सुबह से ही शाहजहानी मूड में हूँ। खूब देर से उठकर चार घी चुपड़े आलू के पराठे दही के साथ खाकर ड्राइंग रूम में कूलर लगाकर दीवान पर मैं अखबार पसर गया हूँ। जाहिर है मेरी बीवी से मेरा ये सुख देखा नहीं जा रहा है। अंदर ही अंदर कुछ कुड़ रही है और किसी न किसी बहाने बार बार सामने आकर अपनी भड़ास निकाल रही है। इतने वर्षों में उसकी निरंतर बड़बड़ाहट का मैं आदि हो चुका हूँ। उसका बोलते रहना मेरे किसी काम में विघ्न नहीं डालता। ऊपर वाले ने एक दहाना दिया है, फाड़ती रहे। उसकी घमासान बमबारी के बीच मैं आराम से अखबार बांट सकता हूँ या मीठी नींद में खर्राटे भर सकता हूँ। एक अरसा हुआ मैंने उसकी सुननी छोड़ दी है। ये अलग बात है कि उसने बोलना कभी नहीं छोड़ा, बस यही विडंबना है। स्त्री पुरुषों की आनुवंशिक बीमारी मानकर अब मैं इस पर ध्यान नहीं देता। मगर कहावत है कि देह पर मल का लेप लगा लेने से भी यम कभी पीछा नहीं छोड़ता। फिर ये तो मेरी पत्नी थी, सात जन्मों के साथ का अलौकिक परमिट लिए मेरे सुख में विघ्न डालने के लिए एक नया उपाय ईजाद कर अब वो ढेर सारी रद्दी के पहाड़ से लदी फदी मेरे सामने आ खड़ी हुई है। अखबार पढ़ लिए तो दो, रद्दी वाले को देना है। मैं अखबार से नजर उठाए बिना गंभीर मुख मुद्रा बनाकर नामे सिर हिलाता हूँ। पत्नी के सामने मैं हमेशा ही बहुत गंभीर बना रहता हूँ ताकि वो अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करके मुझ पर चढ़ाई न कर सके। उसके भयंकर तेज और अग्नि रूपा रणचंडी स्वरूप के आगे मेरा ये इकलौता डिफेंस है। मेरी गंभीर मुख मुद्रा देखकर वो थोड़ा नरम पड़ जाती है, ज्यादा दुस्साहस नहीं करती। वैसे भी मेरी पत्नी जब अपने चेहरे पर 100 किस्म की शिकायतें लेकर गला खखारती हुई सामने हाजिर होती है, मैं समझ जाता हूँ महिषासुर मर्दिनी आज अपने पूरे फॉर्म में है और तत्क्षण एक कछुए की तरह अपने सुरक्षित खोल के अंदर घुस जाता हूँ। चेहरे पर भयंकर गांभीर्य के भाव पैदा कर ऐनक चढ़ाकर किताब में सिर घुसा लेता हूँ। भाव ऐसा कि इस वक्त मैं वॉर एंड पीस सरीके किसी गुरु गंभीर साहित्य के अध्ययन में लीन हूं, जबकि यथार्थ में मैं किसी दोयम दर्जे के दैनिक में संता बंता मार का चवन्नी छाप जोक पढ़ रहा होता हूं और बड़ी कठिनाई से अपनी खीसे निपोड़ने की इच्छा को संयत कर रहा होता हूं। मगर आज मेरा यह फॉर्मूला पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था। श्रीमती जी पर सुबह से ही मानो देवी आई हुई थी। फर्श पर अखबार पटक कर वो स्टैनगन की तरह तड़तड़ा कर चलने लगी थी। रात दिन या तो दफ्तर में छक मारते रहते हो या अखबार इंटरनेट में मुंडी घुसाए रहते हो। आखिर मैं किससे अपनी परेशानी कहूं, पूरा घर बिगड़ता जा रहा है। बच्चों को बड़ों का कोई लिहाज नहीं, बेटा सुबह शाम फेसबुक पर, बेटी मोबाइल पर और तुम्हारे पूज्य माता पिताजी मेरे सिर पर। और तुम, बंदूक की नली मेरी तरफ घूमते ही अचानक बिना सर्दी जुकाम के मेरे गले में बलगम घुड़घुड़ाने लगता है और मैं तीव्र गति से खांसने लगता हूं। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट है जो ऐसी स्थितियों में मैं उसे देता रहता हूं। अपने पुराण वाचन में उपस्थित हुए इस आकस्मिक व्यवधान से श्रीमती जी एक क्षण के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई थी और फिर चेहरे पर वितृष्णा का अथाह भाव लिए कमरे से पांव पटकते हुए निकल गई थी। इधर फर्श पर अनाथ की तरह पड़े 50 अखबारों के 300-400 पन्ने एक साथ एक ही आवाज में चमगादड़ की तरह फड़फड़ाने लगे थे। लगा था अचानक सुनामी आ गई है। सुबह सुबह संडे का मजा बिगाड़ देने के लिए जी चाहा था बीवी की ऐसी की तैसी कर दूं, मगर फिर अपनी भावनाओं पर काबू कर गया। अब वो 20 साल पहले वाली नाजुक फूलों की छड़ी जैसी बीवी नहीं, वर्तमान की 90 किलो की खूब लड़ी मर्दानी वाली बरेली वाली बीवी थी जिसे छूकर मैं अपनी जान का खतरा मोल नहीं ले सकता था। पिछली बार मजाक मजाक में मेरी कलाई मरोड़ दी थी। 7 दिनों तक बाएं हाथ के निकृष्ट काम दाएं हाथ से निपटाने पड़े। उस हादसे के बाद मैंने तौबा कर ली है, जंगली हाथी से भिड़ जाऊंगा मगर इस जल हस्ती से नहीं। अचानक मैसेज अलर्ट से मेरी गहरी सोच में खलल पड़ गया था। मोबाइल का स्क्रीन चमक रहा था। लपक कर देखता हूं, कोमोलिका का मैसेज है। टैगोर की दो भावुक पंक्तियां, जे राते मोर द्वार गुली भांगलो छड़े, हमेशा की तरह बात सिर के ऊपर से गुजर गई। मगर मुद्दा ये कि मैसेज लालित्यमयी कोमोलिका देवी की तरफ से प्रेषित हुआ था। यस, अपने दोनों हाथों को कुहनी से पीछे की तरफ मोड़कर झटक देता हूं। पोड़ी फसली रे फसली, ये नवदुर्गा जैसी रंगत वाली श्यामल बंगालन 6 महीने से भाव खा रही थी। किसी कस्बे से स्थानांतरित होकर हमारे हेड ऑफिस में आई थी। सुना था पति अपनी नौकरी की वजह से इसके साथ नहीं रह पाता है। वहां वो किसी के घर पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। मुंह पर जब देखो इतना बड़ा अलीगढ़ का ताला और सामने फाइलों का स्तूप, जैसे पूरे दफ्तर में उसी ने सबके काम का ठेका लिया हुआ हो। रोज दोपहर से निकलकर हम दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ही बस स्टॉप पर खड़े होकर 15-20 मिनट तक अपनी अपनी बस का इंतजार करते, मगर वो कभी हां हूं से आगे बात बढ़ने ही नहीं देती। वैसे सच पूछो तो इस भारी नितंबों वाली स्त्री के पीछे पीछे रोज एक आध घंटे तक चलना मुझे बुरा भी नहीं लगता था। एक तरह से मुफ्त में नयन सुख मिल जाता था। वो आगे आगे बतख की तरह कूल्हे मटकाते हुए नाजो अदा से चलती और मैं पीछे पीछे अपने अंदर एक दबी हुई उत्तेजना महसूस करते हुए बार बार अपना लाल भभूका हो रहा चेहरा पोंछते हुए चलता। अपने एक ही रुमाल से मोड़ मोड़ कर कभी मैं चेहरा साफ करता तो कभी अपने जूते। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐसा करने में कोढ़ विकृत किस्म का सुख मिलता था। दरअसल मेरी बीवी ने अपने इतने सालों की संगत से मुझे महाकिफायती बना दिया है। वो एक पत्ती में 3 बार चाय उबालकर पीती है, साबुन की बट्टी ताले चाबी में डालकर पोखर की चिकनी मिट्टी से बाल धोती है। यही नहीं, वो अम्मा के दूध में प्योर गंगा जल मिलाती है, कहती है सेहत की सेहत और पुण्य का पुण्य। उधर अम्मा बिचारी ये सोचकर परेशान कि रोज कांसे के गिलास में आधा शेर दूध का सेवन करके भी वो चुरमराती क्यों जा रही है। मैं भी सालों से 2 चड्डी बनियान में 12 महीने गुजार रहा हूं। मोजे से जब तक 10 अंगुलियां कछुए की तरह बाहर गर्दन निकालकर झांकने नहीं लगती, वो मोजे का नया जोड़ा खरीदने नहीं देती। अचानक से कभी कुछ खरीदने का हमारे यहां कोई प्रोविजन नहीं था, मगर अपने मायके वालों के लिए उसका मन मन भर का था। जब तब उसके 3-3 मुस्टंडे भाई आधमकते और वो घी की हंडी उड़ेल कर पूरी कचौड़ी तलने बैठ जाती। खैर, अपनी पत्नी के बाकी गुण फिर कभी बघारेंगे। अभी तो मैं कोमोलिका सुंदरी की बात कर रहा था। हाँ, तो इस तरह से चलते हुए लंबे रास्तों का पता नहीं चलता। हम चल रहे थे, वो चल रही थी, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। अरे, ये तो वाकई एक गीत बन गया। क्या कह रहे हैं, ऐसा गीत ऑलरेडी है, धत कवि बनने का आखिरी चांस भी गया। चलिए जाने दीजिए, कोई गल नहीं। तो मोटी बात यह है कि चल चल कर मैं दुबला हो रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी भी तरह बात बनती ना देख एक दिन मैं पुस्तक मेले से टैगोर की 2-4 किताबों का अंग्रेजी अनुवाद खरीद लाया था। एक तो अंग्रेजी जैसी फनी लैंग्वेज, उस पर बंगाली भावुकता के पितामह टैगोर की कविता, सब कुछ सिर के ऊपर से गुजर गया। किसी तरह 2-4 पंक्तियों के भाव ग्रहण करने में सक्षम हो सका। एक बार डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में गरम समोसे के साथ टैगोर की 2-4 नरम नरम पंक्तियां परोस दी। तालियों के बीच कनखियों से देखा तो कोमोलिका अपनी काली डागर आंखों से मुझे विस्मय विमुग्ध होकर देख रही थी। तीर इस बार ठीक मछली की आंख पर बैठा था। उस शाम वो चपल हिरणी गजगामिनी होकर मंथर गति से चल रही थी। संकेत पाते ही मैं चीते की तरह 2 छलांग में उसके पास जा पहुंचा था। एकदम सिंकारा एनर्जी टॉनिक के मॉडल की माफिक उसने अपने टोल खाते गालों से हल्के से मुस्कुराते मुझे न जाने किस नजरों से देखा था। मेरे अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ था और इसके साथ ही मैंने महसूस किया था कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। हालांकि प्रेम तो मुझे प्रायः ही किसी न किसी के साथ होता रहता है, मगर इस बार बात प्रेम से आगे की कोई गंभीर सी चीज लग रही थी। आजकल मुझे बात बात पर रोना आने लगा था। उस दिन संडास में बैठकर लोटा भर रोया था। बैठे बिठाए नाक सुरसुराने लगती और मैं अपनी बाबरी बालों की जुल्फें लहराकर छत पर जा बैठता और चांद देखने लगता। अम्मा ऊंचा बुलाकर मेरी झाड़ू से कसकर पिटाई भी करवा चुकी थी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। रातों को जाग जाग कर उल्लू की तरह दिखने लगा था। चांद के हाला की तरह आंख के चारों ओर काला पड़ गया था। 24 घंटे दिल में बने रहने वाली कसक साइकोसोमेटिक सिस्टम बनकर भीषण कब्ज का रूप धारण कर चुकी थी। जब अंदर का हाल ऐसा हो तो चेहरे का नक्शा बदलना ही है। लोग कहते शर्मा जी के चेहरे पर आजकल हमेशा 12 बजा रहता है। मैं अपने 12 बजे वाला चेहरा लेकर जिधर से गुजरता उधर फुसफुसाहट पड़ जाती। मैं इधर अलग परेशान। मुझे ख्याल आया था कि लोग कहते हैं बंगालनें जादूगरनियां हुआ करती हैं, मगर अब क्या किया जा सकता था। मुझ पर तो उसका जादू चल ही गया था। अब कान झुकाकर उसके पीछे पीछे बलि के पटरू की तरह चलने के सिवा और क्या चारा था। मुस्कुराकर उस दिन वो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एक रेस्तरां में बैठने के लिए राजी हो गई थी। मन महसूस के मुझे उसे एक अच्छे से रेस्तरां में ले जाना पड़ा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का ख्याल करके। मेरे मुंह से टैगोर की कविता सुनकर वो मुझे कोई सुरुचि संपन्न कवि टाइप का व्यक्ति समझने लगी थी शायद, जबकि अपनी दृष्टि से मैं बिल्कुल एक बनिया किस्म का आदमी था। जिंदगी भर नून तेल के हिसाब में बीत गया था और उस समय भी मेन्यू कार्ड देखते हुए मैं मन ही मन हिसाब में उलझा हुआ था। जब तक लड़की की तरफ से शारीरिक सामीप्य का कोई ठोस किस्म का आश्वासन न मिल जाए तब तक उस पर ज्यादा व्यय करना उचित न होगा। दो लाइम सोडा का ऑर्डर देते हुए मैंने उदासीन भाव से कहा था, मुझे एसिडिटी हो रही है, इस वक्त कुछ खा नहीं सकूंगा, वैसे आप क्या लेंगी। मैं जानता था कि एक बार ऑर्डर दे चुकने के बाद उसकी तरह की कोई भी मध्यवर्गीय महिला संकोच से कुछ और ऑर्डर नहीं दे पाएगी। वो अपनी मुलायम आवाज में काजी नजरुल डिस्कस कर रही थी और मैं अपनी मुंह पर दिग्गज सा भाव ओढ़कर आप्राण उसकी साड़ी के किंचित ढलक जाने से गहरे गले के ब्लाउज से आधे चांद की तरह झांकते उसके शरीर की तरफ देखने से बच रहा था। स्त्रियों की छठी इंद्रियां इन मामलों में बहुत सजग होती हैं। वे झट से भांप जाती हैं कि कौन किस नियत का है। अपनी पहली मुलाकात का उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही भद्रलोक बनने का प्रयास कर रहा था, वरना वो मुझे लोभी कुत्ते की श्रृंखला में डाल देती। इसके बाद वो अधिकतर शामों को मेरे साथ इधर उधर समय व्यतीत करने लगी थी। धीरे धीरे कछुए की तरह वो अपने खोल से बाहर निकल आई थी। मुझे पता चला था कि अधिकांश मध्यवर्गीय स्त्री की तरह वो भी अपने विवाहित जीवन में अकेलेपन और उपेक्षा की शिकार है। वो अपना जीवन, अपनी भावनाएं अपने पति के साथ शेयर करना चाहती है, मगर उसका पति 90% पतियों की तरह उसकी भावनाएं नहीं समझता, उसकी बात नहीं सुनता, उसकी उपेक्षा करता है, इत्यादि इत्यादि। उसकी बातें अपने चेहरे पर हमदर्दी और आंखों में करुणा लिए मैं अर्धनारीश्वर बना अपनी जम्हाई जबरन रोके सुनता रहता और मौका देखकर सहानुभूति जताते हुए उसका हाथ भी दबा देता। वो मुझे एक संवेदनशील पुरुष समझती जिसे स्त्री पुरुषों के संबंधों में बराबरी का यकीन रहता है। मैं मन ही मन सोचता यदि मेरी पत्नी को यह अवसर मिले तो वो भी यही पुराण किसी सहृदय पुरुष को सुनाने से बाज ना आए। दो चार मुलाकातों में ही मैंने समझ लिया कि वो न्यायत ही भावुक किस्म की बंगाली स्त्री थी। इससे मेरा काम जरा आसान हो गया था। मैं उसे किसी रेस्तरां में ले जाने की बजाय गंगा के किनारे ले जाता और 2 रुपए की मूंगफली खिलाकर 4-5 कविताएं सुना डालता था। सब कुछ सस्ते में निपट जाता। महीने की पहली तारीख को गिन गिन कर मुझसे पगार लेते हुए बीवी भी खुश और महीने भर में 100 रुपए की मूंगफली खाकर मेरी बंगालन प्रियतमा भी खुश। लोग सच ही कहते हैं बंगाल में भाषण और प्रेम आज भी बहुत सस्ता है। रुपए के 10 के भाव से नेता और 30 मूंगफली की पुड़िया दर महीने एक रसोगुल्ला सरीखी प्रेमिका। राम राज्य और किसको बोलना चाहिए। मोबाइल की तरफ देखते देखते मैं न जाने कब सो गया। काम वाली बाई ने पोछा लगाना शुरू किया तो मेरी नींद खुली। सामने हमारी कॉलोनी की उर्वशी यानी काम वाली कांताबाई फिरकी की तरह घूम घूम कर फर्श पर पोछा लगा रही थी। जमीन पर उकड़ू बैठकर आगे की तरफ झुककर लय के साथ फर्श पर हाथ चलाते हुए उसके पूरे शरीर में एक मादक सी थिरकन व्याप्त रही थी। मराठी ढंग से बांधी गई तंग साड़ी से उसके विपुल नितंब मेरे एंगल से उल्टे नगाड़े की तरह दिख रहे थे। एकाएक किसी आदिम इच्छा से भरकर मेरा मन हुआ कि उठकर उन्हें दनादन बजा दूं। अभी मैं अपनी योजना के औचित्य अनौचित्य पर विचार कर ही रहा था कि पत्नी देवी फिर से कमरे में प्रकट हो गईं। घुसते ही जाहिर है उसने सारा माजरा समझ लिया था। एक दृष्टि उसने मुझ पर डाली, दूसरी कामवाली पर। मैं अपनी आंखें विडाल तपस्वी की तरह बंद करके पड़ा था। और कामवाली भी अपना आंचल ठीक कर चुकी थी। मैं उसे उसकी मालकिन की दृष्टि बचाकर छोटी मोटी मदद कर दिया करता था और वो भी कृतज्ञता स्वरूप मेरे सामने यदाकदा अपना पल्लू दुरुस्त करना भूल जाती थी। हम दोनों में एक मौन समझौता था, मगर मेरी श्रीमती जी, जिनकी नाक सर्दी से 12 महीने बंद रहा करती थी, न जाने कैसे सब कुछ सूंघ लेती थीं। कई बार वो हमारे असतर्क क्षणों में अचानक प्रकट होकर छापा मार बैठती। इसी क्रम में 3 नौकरानियों की अब तक छुट्टी हो चुकी थी और अब मुझे आभास हो रहा था कि इस चौथी वाली का भी निष्कासन आसन्न था। अपनी अंगीठी जैसी गर्म आंखों से उसे एक मौन धमकी देकर वो मेरी तरफ मुड़ी थी। प्रभु, आप आज मध्यान्ह भोजन में क्या ग्रहण करेंगे? उसके स्वर में बजबजाते व्यंग्य से तिलमिलाकर मैं आंखें खोलता हूं और फिर उसकी भीषण मुद्रा देखकर अपना पैंतरा बदलकर नर्म स्वर में कहता हूं, कुछ भी बना लो जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे तुम्हारे हाथ का कुछ भी बना स्वादिष्ट ही होता है। बात समाप्त करते ही मुझे लगा था मस्का कुछ ज्यादा ही हो गया था।